वो शख्स जो ईमान लाया था बोला, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। देखिए, पीछे फिरौन ने भी यही कहा था कि मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ, उसके कहने के स्टाइल में और इस शख्स के कहने में जरा फर्क तो देखिए, कैसे यकीन दिलाता है अपनी इस बात का। या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयात दुनिया मता, ऐ कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, हमेशा के क्याम की जगह आखिरत ही है। जो बुराई करेगा इसको इतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी, और जो नेक अमल करेगा, ख्वाब मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, ऐसे सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां इनको बेहिसाब रिज्क दिया जाएगा। इसका अपना अकीदा आखिरत कितना मजबूत है। और अगला जुमला भी नोट कीजिए, वया कौमी माली अदूकु मिलन नजाह, ऐ कौम, आखिर ये क्या माजरा है कि मैं तो तुम लोगों को निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो। किस बात से? कैसे आग? तुम मुझे इस बात की दावत देते हो कि मैं अल्लाह से कुफर करूं और इसके साथ इन हस्तियों को शरीक ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता। क्या पता चला, शिर्क की दावत आग की दावत है, हालांकि मैं तुम्हें इस जबरदस्त मगफरत करने वाली जात की तरफ बुलाता हूं। गाफिर ज़म भी काबिल तौब नहीं, हक ये है कि इसके खिलाफ नहीं हो सकता कि जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो, इनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखरत में। ये है अकीदा, मरते मोमिन का ईमान बोल रहा है। कितने खूबसूरत दलाल दे रहा है लोगों को। और हम सब को पलटना तो अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। 3 सेकंड गौर करें, मैं किसी मामले में हद से आगे तो नहीं गुजर जाती। याद रखिए, हद से आगे गुजरने को कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स या रिएक्शन। हर वो अमल जो एक्सट्रीम पे चला जाए वो खतरे का निशान है। हद से ज्यादा सोना, हद से ज्यादा खाना, हद से ज्यादा किसी भी मामले में एक्सट्रीमिज्म आएगा, याद रखिए कि उस बंदे को फिर हिदायत की बात समझ नहीं आती, और शैतान का काबू उस बंदे पे होता है जो हद से ज्यादा खुश हो, हद से ज्यादा गुस्सा है। आप देखिए, लोग गुस्से में अपने आप को मार लेते हैं, हद से गुजर के, खुशियों में हद से गुजर जाते हैं, गमों में हद से गुजर जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। यही बात उसने की कि हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको जरूर हाईलाइट कीजिए, फसतस्कुरूनमा, अन करीब वो वक्त आएगा जब तुम इसे याद करोगे। वफविज अमरी इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो अपने बंदों का निगहबान है। ये है उस दाई इलल्लाह की पुकार जिसका बस ना चले। मैं इस आयत पे जब आती हूँ तो मैं जज्बाती हो जाती हूँ। क्यों? बचपन से आपने एक जुमला सुना हुआ, बड़े की बात और आमले का इचार, इसका असर कब होता है? बाद में। दर्द के साथ दावत इल्लाह करने वाला शख्स, उसकी दावत भी उसके बाद ही आम होती है। ये भी लिख ले जुमला। उसकी जिंदगी में तो इल्जाम लगते हैं और पाबंदियां लगती हैं, सेंक्शंस लगती हैं, या फिर लोग इल्जाम लगाते हैं, ये कितनी बड़ी बातें करते हैं, कोई हो सकता है आज के दौर में? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये नहीं होगा। जो ही वो लोग दुनिया से जाते हैं वो मिसालें बन जाते हैं। और इस वक्त याद आ गई इमाम अहमद की बात। आपको पता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो कलाम है वो जात का हिस्सा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे लफ्ज़ मेरी जात से निकल रहे हैं ना। इस बुनियाद पे एक झगड़ा शुरू हो गया था उनके दौर में। खलीफे वक्त और उसके दरबारी दूसरी सोच को प्रमोट कर रहे थे, क्या? कि कुरान मखलूक है। अब आपको मुझे तो समझ भी ना आए कि चले मखलूक नहीं, कलाम है, जात है, फर्क क्या पड़ता है, लेकिन बहुत सारे फर्क है, इस वक्त जरूरत नहीं। इमाम अकेले रह गए, बादशाह ने उनको जेल में बंद कर दिया। इतना मरवाते, इतना मरवाते, क्या इमाम बोलो कि कुरान मखलूक है? तो वो कहते थे, ऐ बादशाह, तेरे मजबूर करने पे मैं ये बोल दूं ताकि बाद में जितने ये बात बोले उसका बवाल मुझे पहुंचे। कहते हैं कि एक पहाड़ के ऊपर भी इतने कोड़े बरसे तो वो अपनी जगह से हिल जाए। इस्तकामत तौहीद के साथ आती है। नहीं माने, बादशाह ने जेल में डाल दिया, और आपको था कि जेल में मरे। और जिस दिन उनका जनाजा जेल से उठा तो जो लोगों ने बाहर दीवारों से झांक कर देखा, सारा शहर उनके जनाजे में आ गया। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, तू हार गया, इमाम मर चुका है, लेकिन लोगों के दिलों से तू उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सका। तो याद रखियो फविजम रेल अल्लाह, अपनी अपनी कब्र में जाना है। कभी किसी को खुश करने के लिए अल्लाह के हुक्म को नरम ना करें, जुबान नरम रखे, बात सही रखे। इस शख्स ने ये सिखाया आपको मुझे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाँ, जान के बदतमीजी से और गैर हकीमाना बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन दीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हक को कोई आंच नहीं है। अल्लाह ताला में हक का मुहाफिज बना दे। आगे देख लीजिए, जो अल्लाह ने कहा, जो उसका अकीदा था, अल्लाह ने बिल्कुल वही करके दिखाया। कैसे? आखिरकार इन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें इस मोमिन के खिलाफ चली, अल्लाह ने इन सब से उसको बचा लिया। अल्लाह मोमिनों को बचा लेता है। और फिर उनके साथी जो खुद बदतरीन अजाब के फेर में आ गए थे, दोजख की आग है जिसके सामने सुबह शाम वो पेश किए जाते हैं। और जब क्यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा आले फिरौन को शदीद तर अजाब में दाखिल कर दो। फिर जरा ख्याल करो इस वक्त का, जब ये लोग दोजख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। अब जरा एक मंजर आंखों में लाइए दोजख का। दुनिया में जो लोग कमजोर थे, कौन कौन कमजोर है आज तसव्वुर में लाएं, वो बड़े बनने वालों से कहेंगे, कौन बड़े हैं? क्या कहेंगे? हम तुम्हारे ताबे थे, यानी हम तो तुम्हारे अंदर थे, हम बहुत ओप्रेस्ड थे। क्या अब यहां जहन्नुम की आग की तकलीफ के कुछ हिस्से से तुम हमको बचा लोगे? वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहां एक ही हाल में हैं, यानी हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका। फिर ये दोजख में पड़े हुए लोग जहन्नुम के अहलकारों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे अजाब में बस एक दिन की कमी कर दे, एक दिन का ब्रेक दे दे, सोना चाहते हैं। आप इमेजिन तो कीजिए, कभी किसी बीमार को देखें तड़प तड़प के बीमारी में रोता, कहता है मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दो, मुझे एक दिन सोना है। लेकिन इंजेक्शन से भी नींद नहीं आती, जब मौत की डुबकियां शुरू हो जाती हैं, कहेंगे एक दिन के लिए अजाब को कम कर दो। वो पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल बैजीनात लेकर नहीं आए थे? फिर देखिए, वक्त का रसूल आज का दाई। वो कहेंगे हाँ। जहन्नुम के अहलकार बोलेंगे, फिर तो तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ इकारत ही जाने वाली है, यानी मांग लो दुआ लेकिन कबूल कोई नहीं होनी। यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद इस दुनिया की जिंदगी में भी लाजिमन करते हैं। दोबारा पढ़ो, ताकि अगर कहीं दिल के किसी कोने में कोई खौफ छुपा हुआ है तो वह दूर हो जाए। शर्त एक है, ईमान सच्चा हो जाए। यकीन जानो हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद इस दुनिया में भी लाजिमन करते हैं, और उस रोज भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे, जब जालिमों को इनकी माजरत कुछ भी फायदा न देगी और इन पर लानत पड़ेगी और बदतरीन ठिकाना उनके हिस्से में आएगा। अल्लाह हमें अपने वादों पे यकीन दिला दे। आखिर देख लो कि मूसा की हमने रहनुमाई की और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया, जो अक्लो दानिश रखने वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। पस से नबी सबर करो, अल्लाह का वादा बरहक है, अपने कसूर की माफी चाहो और सुबह शाम अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते रहो। हकीकत यह है कि जो लोग किसी सनद और हुज्जत के बगैर जो इनके पास आई हो अल्लाह की आयत में झगड़ रहे हैं, इनके दिलों में किब्र भरा हुआ है, मगर वो इस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं जिसका वो घमंड रखते हैं। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। आसमानों जमीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की निस्बत यकीनन ज्यादा बड़ा काम है। इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स ट्रू। इंसान कितने फुट का है? 5 से 6 फुट का। और आसमान और जमीन कितने बड़े हैं, इसको आप और खुद देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने इधर उसी की बात करके फरमाया कि तुम अपने ऊपर फख्र करते हो, मैं तो इतने बड़ी बड़ी चीजें बना चुका, मगर अक्सर लोग जानते नहीं, और ये नहीं हो सकता कि अंदर और बीना यकसा हो जाए। देखने वाला और ना देखने वाला बराबर नहीं, और ईमानदार और साले और बदकार बराबर हो जाएं, मगर तुम लोग कम ही समझते हो। यकीनन क्यामत की घड़ी आने वाली है, इसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। सच है कि नहीं? अक्सर की जिंदगी को देखकर लगता है कि क्यामत का यकीन है। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, इसको हाईलाइट कीजिएगा। وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं जरूर वो जलीलो ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। हाईलाइट करें, यहां दुआ को इबादत कहा गया है। हदीसें भी हैं लेकिन यह आयत इसकी दलील है, क्योंकि यहां इबादत की बात है। और कौन सी इबादत जिसका पीछे जिक्र है? दुआ करना। कोई अच्छी सी दुआ करें अपने लिए, क्योंकि कुरान पढ़ने के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। और इसके बरक्स जो दुआ नहीं मांगते, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो जरूर जलीलो ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह की सिफात का यकीन आ जाए तो खुद ब खुद जुबान पे दुआएं आती है। देखिए दुनिया में कोई बहुत अमीर हो ना रिश्तेदार, तो गरीब गुरबा जो होते हैं उनके मुंह पे आ ही जाता है कि ये मेरी मदद कर दें। तो जब अल्लाह की सिफात पे नजर पड़ती है ना तो जुबान पे दुआ आती है। तो जो मांगना है रब से मांगे, जो बंदों से भी मांगना है ना रब को कहें कि आप उनके दिल में डालें कि वो ये दें, वो ये काम करें, वो इसमें ये करें। क्योंकि जब तक आप अपनी खुदी को कायम नहीं रखेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अब आप में से कितने लोग हैं जो अक्सर में शामिल होना चाहते हैं? हमें अक्सर में ना अल्लाह करे, हाँ अक्सरियत का दीन सही हो जाए फिर हमें अल्लाह उनमें शामिल कर दे। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है, तुम्हारा रब है, हर चीज का हालिक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम किस तरफ बहकाए जा रहे हो? इसी तरह वो सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। ऐ अल्लाह हमें इनकार से बचा दे। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई। कैसी लगती है आपको अपनी सूरत? अगर किसी के दिल में जरा से भी अपनी शक्ल और सूरत के बारे में कोई कॉम्प्लेक्स था, इस आयत पे अमल करते हुए अभी कहें कि अल्लाह तूने मुझे सबसे अच्छा बनाया। अगर सूरत होती ना, अगर नाक होती कोई ना, कान होते ना, फिर क्या बनता? तो कभी अपनी या किसी की सूरत को डिस्कस ना करें। हमारे कल्चर में पैदा हो तो बच्चा कैसा है, दुल्हन कैसी लग रही थी, और अल्लाह रहम करे कोई मरे तो कहते हैं कैसा रूप आया था, नूर आया था। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये हमारे जाहिर परस्त होने की अलामतें हैं। अंदर को देखो, अंदर कितना हसीन है किसका? जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क दिया, वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला, वो कायनात का रब, वही जिंदा है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी को तुम पुकारो। शुरू में मैंने बता दिया था सूरत मोमिन तौहीद फिर दुआ की सूरत है। अपने दीन को इसी के लिए खालिस करके, ये है असल बात। पहले दिल से सारे बुत तोड़ो, सारे माबूदों पे ला की तलवार फेरो, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल में किसी और को बसा कर रब को पुकारोगे कुछ नहीं होगा। तो पहले दिलों को खालिस करना है। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दूसरी दफा आ गया आज के पारे में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो मुझे तो इन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बयीनात आ चुकी। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम कर दूं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ। और अगर आप पहुंचे हुए हो तुम ना भूलो क्या, फिर वो बढ़ाता है तुमको ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो। देखिए इंसान की जिंदगी का साइकिल है, जवानी तक हमारी हर खूबी बढ़ती है, अकल का हुसन, और जब बच्चे जवान होते हैं खासतौर पर 18-19 साल में, आप देखिए आम शक्लो सूरत के बच्चे बच्चियां भी खूबसूरत हो जाते हैं, जवानी का एक रूप होता है। उसके बाद क्या होता है? बुढ़ापे में, अल्लाह बुढ़ापे में एक एक करके सब ले जाता है। दांत उतरते हैं, बाल झड़ते हैं, जिस्म से यकीन करें कि वजन भी उतर जाता है। अक्सर बूढ़े क्या बन जाते हैं? एक पोटली। जब खाना ही दलिया है तो मोटा कैसे होना है? गोश्त तो चबा नहीं सकते, मीठा तो मना हो गया। फरमाया तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है, यानी ऐन भरपूर जवानी में तुम चले जाते हो। ए अल्लाह, जो जवानियों में चले गए उनकी बख्शिश फरमा। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ। यानी ये आपकी मेरी जिंदगी का जो साइकिल चल रहा है, क्यों चल रहा है? कि हम अपनी मौत के दिन तक पहुंच जाए। हर दिन हम अपने मौत के लिए सफर कर रहे हैं, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला। वो जिस बात का भी फैसला करता है, बस एक हुक्म देता है, फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। बस वो एक हुक्म देता है कि वो हो जाए, और वो हो जाती है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए सेहत के कुन कह दे, आफियत के कुन कह दे, हमारी दुआओं की कबूलियत के कुन कह दे, हम पे रहम कर दे, हिदायत के कुन कह दे। अल्लाह, हमारी औलादों की हिदायत के कुन कह दे। अल्लाह, हमारे घर वालों, शोहरों और उनके घर वालों की आफियत के कुन कह दे। हमेशा ऐसे मौके पे दुआ किया करें, अल्लाह हम तुझे तेरे साहिब कुन फयकून होने का वास्ता देते हैं कि हमारी दुआओं पे कबूलियत का कुन कह दे। तुमने देखा इन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं, कहाँ से वो फिराए जा रहे हैं? ये लोग जो इस किताब को और इन सारी किताबों को झुठलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। जब क्या होगा? इजिल अगलालु फी आनाकिहिम वस्सलासिल, जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे। डोर डंगर का तसव्वुर नहीं आता, गाय भैंसे और जो भी ऐसे जानवर है, उसके गले में जंजीर डाली जाती है, फिर उसको खींचा जाता है, फिर खुरली या फिर वो पानी के एक जौहड़ की तरफ ले जाया जाता है। देखिए, इंसान को गले में जंजीरें डालकर इस तरह खींचा जाए, क्या तौहीन है! क्योंकि दुनिया में खुले फिर रहे थे, और फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे, और वहां जाके भी नहीं छोड़ा जा रहा कि जाओ, बल्कि सवाल जवाब साथ साथ है। ये भी एक जहन्नमियों के लिए अजाब है, टॉर्चर। सोचो, आप ठीक रहे हो? जैसे अगर कोई बात ना माने और वही काम हो जाए तो आप कहते हैं सुनाओ फिर, आप समझ आ गए, आप सबक याद हो जाएगा। ये वही बात फिर इनसे पूछा जाएगा, वो कहाँ है अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे? तौहीद फिर दुआ, आज ही तौबा कर ले। अगली पिछली जिंदगी में कहीं किसी दूसरे को अल्लाह के साथ शरीक किया था, अल्लाह से मांग लें कि अल्लाह हमें उससे माफ कर दे। वो जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को पुकारते ही ना थे। देखिए, शुरू में सच निकला मुंह से, नजर नहीं आ रहे वो बाबा जी जिन्होंने कहा था कि जाओ जाओ मैं बचा लूंगा, मेरे नजराने दो, मेरी मन्नतें पूरी करो, देखना। लेकिन जब फिर एहसासों को हो ये बात कही तो हम तो मुशरिक है, तो क्योंकि नहीं नहीं अल्लाह जी, हमने तो कभी शिर्क नहीं किया। इस पे बड़ी तफसीरें बातें बनाएंगे कि किसी तरह अल्लाह को राजी करते हैं और फरिश्तों को धोखा दे के जहन्नुम से निकल कर जन्नत में चले जाए। इस तरह अल्लाह काफिरों का गुमराह होना साबित कर देगा। इनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा इंजाम इसलिए हुआ कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे। सोचिए जरा, कौन कौन सी गैर हक ना हक चीज आती है, फिर इसी पर इतराते थे। अब जाओ, जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है। बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। जरा चंद सेकंड सोचिए तो सही, बनेगा क्या? सिर्फ गर्मी में 10 मिनट बैठना पड़ जाए, पसीने आने लगते हैं। अल्लाहुम्मा तजन। देखिए, पलटना तो कल है ना, आज पलट जाए, आज अपनी फिक्र कर लें। जिंदगी में हमें अल्लाह बुढ़ापे की तरफ और बुढ़ापे से फिर मौत की तरफ ले रहा है। उम्र का बढ़ना हमारे लिए इस बात की दलील है कि अपनी अक्ल को भी झुका लें, अपनी सारी सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगा दें। बस से नबी, सब्र करो, अल्लाह का वादा बरहक है। अब ख्वाह हम तुम्हारे सामने ही इनको इन बुरे नतायज का कोई हिस्सा दिखा दें जिनसे हम इन्हें डरा रहे हैं, या इससे पहले तुम्हें दुनिया से उठा लें, पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है। अल्लाह पलटने से पहले ही हमें पलटा दे। ऐ नबी, तुमसे पहले बहुत से रसूल भेज चुके, जिनमें से बास के हालात हमने तुमको बताए और बास के नहीं बताए। कितनों के बताए? 25। और तस्करा हदीस में कुछ ज़ईफ़ रिवायत भी हैं, 1,24,000 पैगंबर आए थे, कमो बेश होंगे। लेकिन हमें कुछ का बताया, कुछ का नहीं बताया। किन का बताया? जो अरब की सरजमीन के इर्द गिर्द आए थे, बाकियों का नहीं बताया। किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़न के बगैर खुद कोई निशानी ले आता। इसको भी नोट कर ले, जिस तरह इंसान, आम जो इंसान है वो हमारी मदद नहीं कर सकते ना, अल्लाह के हुक्म के सिवा नबी भी नहीं कर सकते। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया, और उस वक्त गलतकार लोग खसारे में पड़ गए। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये मवेशी जानवर बनाए ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त खाओ। वलकुम फीहा मुनाफे, इनके अंदर तुम्हारे लिए और भी बहुत से मुनाफे हैं। वो इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहां जाने की हाजत हो वहां तुम इन पर पहुंच सको। कितनी बड़ी अल्लाह की एक कुदरत है, जिधर जाना चाहते हैं चल पड़ते हैं। मैं तो गाड़ियों से हैरान होती हूँ, आप जिधर मोड़ते हैं गाड़ी मुड़ जाती, कभी अड़ी की उसने, कभी अटकी। इन पर भी और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम इसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे। इस पे एक पिक्चर आपको इंशाल्लाह भेजेंगे, कल मुझे किसी ने भेजी, बहुत ही खूबसूरत। समंदर है, एक बड़ा सा जहाज है, कश्ती नुमा जैसे बड़ी सी होती है, वो चल रहा है, और ट्रांसपेरेंट पानी में नीचे एक बहुत बड़ी तकरीबन कश्ती के साइज की मछली है, वो भी जा रही है। और मैं उसको देख के सोच रही थी इस बहरी जहाज को बनाने में कितना वक्त, कितनी मेहनत, कितना माल लगा होगा। इस कश्ती को और ये इस मछली को किसने बनाया? यही देख के दोनों चीजें जमा हो गई, पानी में कश्तियों पे चलते हो या मछलियों को देखते हो, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं है कि इनको इन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके? वो इनसे तादाद में ज्यादा थे, इनसे बढ़कर ताकतवर थे, और जमीन में इनसे ज्यादा शानदार आसार छोड़ गए। क्या पता चला अपनी मौजूदा तरक्की पे इतना मान ना करो। जो कुछ कमाई उन्होंने की थी आखिर वो इनके किस काम आई? सारी तरक्की पीछे हो गई। याद रखिए, आज दुनियावी इल्म हिदायत के रास्ते की रुकावट बन रहा है। लोग इल्मुल वही के लिए 1-2 साल नहीं लगा सकते, दुनियावी तालीम के लिए 20-20 साल लगाकर भी अभी कुछ और पढ़ना है। अल्लाह पूछता है बताओ, दुनिया बनी, पढ़ा, जॉब की, पैसा कमाया, बस इसी को कामयाबी समझा? नहीं, असल बात यह है कि इस इल्मुल वही को भी इस्तेमाल करो, इसको भी इसका ड्यू हक दो। असल में आज हमारा ये मियार ही बदलाव है। हमने कामयाबी अपनी और अपनी औलादों की दुनिया की तालीम के साथ रखी। आप देखिए, सब कुछ कर लिया लेकिन अगर अल्लाह को राजी ना किया तो किस काम की ये तरक्कियां हमारी और हमारी नस्लों की। अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने वाला बनाए। अपने से एक सवाल तो कीजिए इस वक्त, दुनिया में आपने जो भी पढ़ा उसको जहन में लाए, मैट्रिक भी किया हो तो कम से कम 12 साल तो लगे होंगे, उससे ऊपर जिसने जो पढ़ा उससे आपने फायदा लिया और ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मुल वही यानी इस अल्लाह के दीन को सीखने के लिए कितना वक्त लगा सकती हूँ, कितने साल, कितने महीने, एफर्ट देख लीजिए वहां कितनी लगी, इस पे कितनी कर सकती हूँ। माल कितना लगा मेरा आप दुनिया सीखते हुए, इस पे कितना लगा सकती हूँ। यहां से आपको खुद पता लगेगा कि 24 पारे पढ़ने तक दिल कितना खुला है। जिस चीज की इज्जत अहमियत होती है हम उस पे वक्त भी लगाते, माल भी लगाते, सेहत भी लगाते, और ख्वाब भी उसी के देखते, और कुछ नहीं तो ख्वाब तो देखना शुरू कर दें कि कभी हम भी इस कुरान को पढ़ेंगे। आप सुनते हैं इदरीस अबकर की तिलावत, आवाज से लगता है कि उनको समझ आ रही है? समझ आता है ना, तो फिर आपको मुझे भी समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इसके लिए जमा दे। फरमाया, जब इनके रसूल इनके पास बैयिनात लेकर आए तो वो इसी इल्म में मगन रहे जो इनके अपने पास था। हाईलाइट करें, ये कौन सा इल्म है? दुनिया का इल्म, सॉरी, दिल तो बड़ा करता है पर पढ़ रही हो, जॉब करी। आप में से जो बच्चियां यहां बैठी हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन है, हाथ खड़ा करेंगे? कितने लोग हैं जो किसी ना किसी जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हैंड रेस करें। आपको कहा जाए कि आप कुरान सीखने के लिए थोड़ा सा पॉज ले लें तो ले सकते हैं? यहां बैठ के आप नहीं, इरादे करने हैं, फैसले अल्लाह ने आपसे लेने हैं। आज कितनी बच्चियां शहर में मौजूद हैं, क्यों नहीं इधर? क्योंकि वो पढ़ने गई हुई है। कितनी बच्चियां एक दिन नहीं आई? अल्लाह अकबर कबीरा, मैं हैरान होती हूं, मैं सोचती हूं किस चीज में मगन है, या दुनिया बनाने में, या संवारने में, या खाने में, या पढ़ने में। जॉब है जी, बस तौबा करो, जॉब छोड़ के कोई कहीं जाए, कोई किसी को मेहमान बुलाए अपने घर और आप कहें कि आज खाने, अरे भाई मेरा जॉब का दिन है, आप मुझे आज बुला रहे, वीकेंड पे बुलाइएगा, छोड़ते कोई? आप देखिए कि कितना हम उन चीजों को अहम समझते हैं। अल्लाह ने ये बात कह दी, वो तो इस इल्म में मगन रहे जो इनके पास। तो और इसकी एक और भी तफसीर है, जो पहले से इल्म था उसी में खुश थे, कहते थे हमें नहीं चेंज होना, सॉरी जिस रास्ते पे लगे हैं लगने दो। हुआ क्या अंजाम देखिए, और फिर इसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कहते थे 1400 साल पुरानी किताब आज पढ़ें, इट डजेंट लुक गुड। जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वहदहू ला शरीक को और हम इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम उसका शरीक ठहराते थे। देखिए सूरत का एंड है, और तौहीद फिर दुआ, वहां जाके इनकार करेंगे, दुनिया में नहीं छोड़ सकते थे। कहते थे जिस रास्ते पे लगे हैं बस चुप कर जाओ, अगर हमारे बड़े करते थे तो गलत थोड़ी करते होंगे। मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद इनका ईमान इनके लिए कुछ नाफे ना हो सका, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर करता जाबता है जो हमेशा इसके बंदों में जारी रहा, और इस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए, बैंकरप्ट हो गए। तो इस सोच के साथ इस सूरत को पूरा करते हैं कि हमारी कोशिशों का रुख किधर है और हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र लगाते हैं।